consumption.
Second group. सभी एक बल एक भरोसे का अनुभव करते हो। एक बल एक भरोसे वाले की निशानी क्या होगी? एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एकर स्थिति में स्थित होगी। एकर स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। तो ऐसे रहते हो कि कभी हलचल कभी अचल। हलचल के समय एक बल एक भरोसा कहेंगे या अनेक बल अनेक भरोसा कहेंगे? जब एक बाप द्वारा सर्वशक्तियां प्राप्त हो जाती है तो एक बल एक भरोसा चाहिए ना। एक को भूलते हो तभी हलचल होती है। तो अचल रहने वाले हो ना। बाबा कह रहे हैं सभी एक बल एक भरोसा का अनुभव करते हो। एक बल एक भरोसे वाले की निशानी क्या होगी?
जान चली जाए
पर
धर्म पड़िए, धर्म न छोड़िए।
एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक कटस्थ स्थिति में रहेगी। एक ही सहारा, एक ही भरोसा, एक परिनिश्चय, एक से सर्व प्राप्ति, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, सब कुछ एक। अगर एक है तो एक रस है। अनेक बल और अनेक भरोसे अगर है तो एक रस नहीं है। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। तो ऐसे रहते हो कि कभी हलचल कभी अचल। हलचल के समय एक बल एक भरोसा कहेंगे या अनेक बल अनेक भरोसा कहेंगे? जब एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाती है तो एक बल एक भरोसा चाहिए ना। एक को भूलते हो तब हलचल होती है। तो अचल रहने वाले हो ना। यहाँ आपका यादगार कौन सा है? अचल घर है या हलचल घर है? या अचल घर कभी हलचल घर हो जाता है? यादगार आपका ही है ना, फिर हलचल में क्यों आते हो? प्रैक्टिकल का ही यादगार बना हुआ है। तो सदा ये याद करो कि एक बल एक भरोसे में रहने वाले हैं, क्योंकि भक्ति में अनेक के ऊपर भरोसा रखकर अनुभव कर लिया ना तो क्या मिला? भक्ति में अनेक के ऊपर भरोसा किया, क्या मिला?
गिरते आए
हैं। गिर गए और छाछ मिल गई, और क्या मिला? दुख चने भूगरे मिल गए। अनेक पर भरोसा, सब कुछ गवा दिया ना। सतयुग का इतना सारा धन कहाँ गवाया? भक्ति में गवाया ना। अच्छी तरह से अनुभव कर लिया ना। तो जब भी कोई ऐसे हलचल की परिस्थिति आती है तो अपने यादगार अचल घर को याद करो। जब यादगार या अचल घर है तो मैं कैसे हलचल में आ सकता हूँ? ये तो सहज याद आ जाएगा। तो हलचल में आने का कारण, हलचल का वार कहाँ होता है? निश्चय पर। एक तो संपूर्ण निश्चय या कोई निश्चय नहीं, ऑल और नन, ये प्रिंसिपल है। अगर कोई कहे मुझे थोड़ा निश्चय इस बात में नहीं है, अर्थात कोई निश्चय नहीं है। बाप में निश्चय अर्थात उसने जो कुछ कहा उस हर बात में निश्चय। उसने कहा ये हो सकता है, ऐसी कोई एक अवस्था है जिसे एक रस अवस्था कह सकते, वो आ सकती है, मतलब आ सकती है। उसने कहा है कि अचल बन सकते हो, मतलब बन सकते हैं। पहले अभी हलचल में है, पहले अभी अचल नहीं है, फिर भी उसने कहा है, उस पर विश्वास, निष्ठा, विश्वास, एतबार, भरोसा, एक पर सब कुछ। ऐसा निश्चय कि जो हिले ही ना, सारी दुनिया हिलाने की कोशिश करे पर ना हिले। परिस्थिति में, परीक्षाओं में, टेस्ट होती है ना निश्चय की। अगर अनेकों पर विश्वास है और अनेक बल है, हमने कईयों को आधार बना रखा है अपने जीवन का, जो भिन्न भिन्न बातें हैं उन भिन्न भिन्न बातों का किसी किसी को आधार बना रखा है, किसी मनुष्य को, तो जरूर दुख की प्राप्ति होगी हमको। अगर ये भी है कि किसी के साथ अन्याय हो जाता है, वो सोचता है कि इसके पास जाओ तो न्याय मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो दुख होगा, क्योंकि वहां पर भी देहधारी पर भरोसा किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो बल है, इस जीवन का जो बल वो परमात्मा है, इस जीवन का जो भरोसा है वो एक ईश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। किसी मनुष्य के निर्णय पर, किसी मनुष्य की दया पर, किसी मनुष्य के आधार पर हम यहाँ नहीं है, अपने निश्चय के आधार पर यहाँ है। तो यादगार अचल घर है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर्वत जो है कभी हिलता नहीं है, आंधी तूफान बारिश स्थिर रहता है। प्राकृतिक आपदा अलग बात है, परंतु जब यादगार ही अचल घर है तो मैं कैसे हलचल में आ सकता हूँ। स्वयं से बातें है ये, बाबा ने कहा ना बेबी, एकांत में स्वयं से बातें करो। जब यादगार मेरा अचल घर बना के रखा है तो मैं कैसे हलचल में आ सकता हूँ। उस बात को ढूंढो, निरीक्षण करो उस बात का, कौन सी वो बात है जिसने हलचल में लाया था, क्योंकि उसमें इतना सामर्थ्य है कि फिर वो हलचल में लाएगी। एक बार लाया ना, फिर लाएगी। इसके लिए चेकिंग करो उसकी। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। हमारे जीवन का आधार कोई साधन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई लौकिक सुख नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, धन नहीं है, यहाँ की कोई सामग्री नहीं है, यहाँ का कोई पदार्थ नहीं है, यहाँ की कोई भी बात नहीं है। आधार एक परमात्मा, उस पर जो विश्वास है, बस उसी के आधार पर चल रहे हैं। तो अनुभव होता है कि बीच बीच में और कोई संबंध भी खींचता है। जब सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव होता है तो दूसरे संबंध में आकर्षण होने की तो बात ही नहीं है। अगर कोई दूसरा संबंध खींच रहा है तो क्या करे। वो तो जोड़ दिया, उसके बाद भी खींच रहा है, जोड़ तो दिया, कहने को क्या जाता है। माँ बाप, माँ भी तुम, बाप भी तुम, टीचर भी तुम, सदगुरु, एक लाइन तो बोलनी है। योग में बैठो फोटो के सामने और एक लाइन बोल दो, माँ तो पिता तुम है, बस बोलने में क्या जाता है। अगर कोई संबंध में बुद्धि है, कोई संबंध अच्छा लगता है निभाना, हम ऐसा थोड़ी कहता है, कोई थोड़ी कहेगा मेरा ये इस आत्मा के साथ संबंध है वो माया है, ऐसा कोई कहता है क्या। सब उसकी जस्टिफाई करते हैं, उसको जरूरी है, सेवा है हमारे, सेवन सेवा संबंधों के ऊपर सेवा, कर्तव्य, दया, सहानुभूति और रहम का लेप लगा हुआ है ना, तो दिखता थोड़ी ना है, वो अंदर है, हम ही लगाते हैं। तो बाबा ने तो कह दिया इधर, जब सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव होता है तो दूसरे संबंध में आकर्षण होने की तो बात ही नहीं है। इसका मतलब एक से सर्व संबंध अनुभव नहीं है। क्या करे, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कर सकते हैं, क्या करे।
तो बारह बंदा रहे सबसे
कौन? लाल बंदर। फिर जहाँ आकर्षण है वहाँ विकर्षण का बंदर रखना पड़ेगा, अपोजिंग थॉट्स रेज करना पड़ेगा। एक प्रकार के विचार आ रहे हैं, उसके विरुद्ध जो विचार है उनको नए विचार खड़े करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, एक नई धारा उत्पन्न करनी पड़ेगी विचारों की, जो कि उसके विरोध में काम करे। एक व्यक्ति है जिसको किसी से बहुत ही प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, इतना प्यार, इतना मोह, इतनी आसक्ति है कि वो व्यक्ति निरंतर उसी के बारे में सोचता है, उसके बिना रह नहीं सकता। अभी वो कैसे मुक्त हो इस आकर्षण से? जितना जबरदस्त आकर्षण है उसको अवर्शन थेरेपी कहा जाता है, इसे साइकेट्री में अवर्शन थेरेपी। जैसे किसी को सिगरेट छोड़नी है तो वो उसके प्रति नफरत उत्पन्न करता है, फिर सिगरेट पीता रहेगा परंतु अंदर एक प्रोसेस चालू करता है धीरे धीरे उसके प्रति घृणा की, जिस चीज को उसे छोड़ना है उसके प्रति। अवर्शन थेरेपी, अवर्श अर्थात तिरस्कार करना। अभी सिगरेट छोड़नी है तो सिगरेट से क्या क्या नुकसान है, धीरे धीरे पढ़ना चालू करेगा उसके बारे में। एकदम तो छूटता नहीं है कोई चीज, उसको परमानेंट छोड़ना है ना तो पहले ज्ञान उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्या क्या नुकसान होता है, फिर अनुभव सुनने पड़ेंगे लोगों के, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर धीरे 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 ये जो इतनी आसक्ति है ये थोड़ी ढीली होगी, उसके सिवा नहीं होगी। बाबा के कमरे में बैठ के कह दिया, लाल लाइट लग गई कि तुम माँ बाप पिता सब कुछ हो, उससे नहीं होगा, इधर भी काम करना पड़ेगा थोड़ा। इस जो संबंध है, इस संबंध से क्या प्राप्त हो रहा है? जैसे एक पागल खाना था जिसमें कुछ साइंटिस्ट गए और साइंटिस्ट ने देखा एक पागल बहुत रो रहा है, पीट रहा है, चिल्ला रहा है और उसके हाथ में एक फोटो है, ऐसे पकड़ रहा है फोटो में, फोटो पकड़ पकड़ के रो रहा है, इतना रो रहा है, कितना साल से, 10 साल से इधर, क्यों रो रहा है ये? बोलते वो फोटो में जो है ना स्त्री, उसके साथ इसको शादी करनी थी, वो नहीं मिली, उसने किसी और से शादी कर ली, इसके लिए दुखी है, पीड़ित है, दर्दी हो गया है, पागल हो गया है उसके प्यार में, इतना पागल कि उसको भूल ही नहीं सकता ये, बस उसी की याद में रहता है। पागल हो जाता है ना व्यक्ति अगर कोई किससे प्यार करो और नहीं मिले तो। पागल है मतलब यही वजह से पागल हुआ था, ये जो अवस्था है इसी को पागलपन कहा गया है, वैज्ञानिक इसी अवस्था को विक्षिप्तता कहते हैं। ये जो अवस्था उसके वो अपने रीति से पागल थोड़ी है, वो तो सही कर रहा है, वो जो कर रहा है वो सोचते हैं मैं राइट हूँ, ये करना चाहिए, और जो दूसरे है उनके रीति से उनकी दृष्टि से तो वो पागल ही है, क्योंकि वो जो कुछ कर रहा है वो सही नहीं है। दूसरे सेल में जाते हैं, वहां पे एक दूसरा पागल होता है, वो अपने आप को नोचता है, खरोचता है, मारता है, पीटता है, खुद को इतना दुख देता है स्वयं को, बोलता है ये कब से होते, ये भी 10 साल से ही है, ये क्यों पागल हुआ? बोलते इसने उससे शादी की जिससे, वो जो स्त्री थी ना उसने इसके साथ शादी की, उसकी वजह से ये पागल हो गया। इतना दुख दिया उसने, उस दुख के कारण ये पागल हो गया। जो प्रिय है उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो व्यक्ति पागल होता है, और व्यक्ति पागल तब भी होता है जो प्रिय है वो मिल जाता है, क्योंकि प्रिय के मिलते ही पता चलता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, यही संसार है, यही भूल भुलैया का खेल है, सारा जीवन एक वस्तु के पीछे भागता है, इसके लिए दुखी है। दूसरा वस्तु के पीछे भागता है और चीज मिलते ही उसकी व्यर्थता का पता चलता है, फिर उसको छोड़ नहीं सकता है, ये ऐसा भूल भुलैया का खेल है सारा संसार। दोनों पागल है अभी, एक को अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि इस संसार के जो भी संबंध है उनके वास्तविक स्वरूप पर ज्ञान से चिंतन करना। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है, नहीं समझ कहो, ज्ञान कहो, ज्ञान से ही गीता में लिखा है जितने पूर्व के संचित कर्म है सब भस्म हो जाते हैं। ज्ञान वह अग्नि है, ज्ञानाग्नि जिसको कहते हैं। ज्ञान एक ऐसी अग्नि है कि जिसके प्रभाव में कोई भी अंधकार नहीं रह नहीं सकता। सर्व शुद्ध करने वालों वाली वस्तुओं में नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमी विद्यति, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमी विद्यति, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में और कुछ भी नहीं है। जो संपूर्ण ज्ञान में स्थित है, जिसके मन में कहीं पर भी, क्योंकि हमसे जो गलतियां होती है वो अज्ञान के क्षण में होती है। व्यक्ति क्रोधित होता है और किसी का खून करता है या कुछ भी हिंसात्मक कर्म करता है। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके बताया कि ये जो क्रोध है ये क्षणिक पागलपन है। वो क्रोध करने के बाद तुरंत व्यक्ति को पता चल जाता है मैंने गलती कर ली, वो क्षणिक पागलपन है और वहां पर ज्ञान की कमी हो गई। तो जहां ज्ञान की कमी होती है वहां मिस्टेक होती है, पूर्ण ज्ञान को समझा ही नहीं है। हाँ, तो ज्ञान के संकल्पों को भी, शुद्ध संकल्पों को भी कल कहा ना बाबा ने, एक एक संकल्प, एक संकल्प अगर हलचल है तो बहुत बड़ी बात है। एक संकल्प पर सब कुछ आधार है, एक संकल्प को आधा मत समझना, छोटी बात नहीं समझना। मनसा सेवा के लिए कहा था ना कल वरदान में, तो एक एक संकल्प पर काम करना। हमारा एक एक संकल्प ज्ञान युक्त संकल्प हो, श्रेष्ठतम संकल्प हो, उसके लिए बुद्धि में उतना ज्ञान को भरना पड़ेगा। दिन रात भरते रहना, भरते रहना, भरते रहना, भरते रहना, सुनते रहना, पढ़ते रहना, सुनते रहना, पढ़ते रहना, सुनते रहना, पढ़ते रहना, बस यही काम करते रहना और बोलते रहना बस। नहीं भूलता है आत्मा को, कुछ नहीं भूलता है, जो डाला है वो नहीं भूलेगा। वो डालते जाओ, डालते जाओ। इंक की जो बॉटल है वो खाली हो गई है, अब उसमें इंक लगी हुई है, अब उसको स्वच्छ करना है, क्या करोगे? एक ही मेथड है, रख दो उसको नल के नीचे, पानी जाएगा उसमें, पहले पहले गंदा गंदा निकलेगा बहुत सारा, और एक समय आएगा कि फिर स्वच्छ निकलेगा। तो जैसे ही ज्ञान डालते जाओगे, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, बहुत सारी वासनाएं उधर संचित है, जन्म जन्म के पाप, जन्म जन्म की वासनाएं, जन्म जन्म की इच्छाएं, जन्म जन्म के भोग की स्मृतियां, उनको केवल एक ट्रिगर की आवश्यकता होती है। बाहर का एक ट्रिगर मिलते ही वो बाहर आती है। कुछ देख लिया, कोई मूवी देख ली, कोई पिक्चर देख लिया, कोई फोटो देख लिया, कोई पोस्टर देख लिया, वो वासना स्टिमुलेट करके वो संस्कार बाहर आता है। अभी विधि क्या है? पहले तो ये सारे ट्रिगर को स्टॉप कर दो। दूसरा, ज्ञान भरते जाओ, भरते जाओ, ताकि वो रहेगी, दब जाएगी, इतनी दब जाएगी, इतनी दब जाएगी, फिर उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और ज्ञान के साथ, तो इसे अवर्शन थेरेपी कहा जाता है। जिस संबंध से, जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से, जिस आकर्षण से हम छूटना चाहते हैं, उसके प्रति घृणा भाव उत्पन्न करना। जैसे बाबा हमें घृणा उत्पन्न कराता है संसार से, ये दुनिया से, ये दुनिया विनाश होने वाली है, जो है वो नहीं रहेगी, इससे क्या प्रीत करना, इससे क्या आसक्ति रखना, इससे क्या मोह रखना। तो जिस भी चीज से मुक्त होना है, जिस भी संबंध के आकर्षण से मुक्त होना है, उसके दोष, इस संसार के प्रति दोष दृष्टि, ये भक्ति का शब्द है, दोष दृष्टि रखना। क्या क्या दोष है इसमें? किसी एक खाने की वस्तु से छूटना है, उसमें क्या दोष है वो देखो, कोई भी चीज हो सकती हो। फिर ऐसे समझो, स्वाद उसमें है ही नहीं। जो चीजें हैं उनमें कुछ नहीं, सारा हमारे मन का खेल है। जो किसी व्यक्ति को बहुत सुंदर लग रहा है किसी और को असुंदर लगता है। किसी व्यक्ति के लिए जो बहुत टेस्टी चीज है वो दूसरे को खाने की इच्छा नहीं होती है। बीमार व्यक्ति को तो देखने की इच्छा नहीं होती है, इतना पड़ा रहता है, उसको बोलो खाओ खाओ खाओ, वो खाता ही नहीं है, नली डालो और फिर खिलाओ। तो है किसमें? जो नॉर्थ इंडिया का है उनको खाली रोज चावल ही चावल दे दो, साउथ में चला जाए तो क्या करेगा वो? और उनको नीचे वाले उनको रस उस चावल में ही है जिसका जहाँ जन्म हुआ है, जिस घर में जिस संस्कृति में उसी अनुसार हमारे स्वाद हमारे संस्कार हमारी टेस्ट बनी हुई है। इसके लिए बहुत सारे साधु संन्यासी देखो, साईं बाबा को देखो, सब जगह जाके भीख मांग के आते थे और जो भी खाना है एक इसमें डाल देते और खाओ, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। लक्ष्य था केवल इस शरीर को जीवंत रखना है, बस ये संकल्प से। क्या ब्राह्मणों का ये लक्ष्य रहते चल रहे कि हम जो खा रहे केवल शरीर को जीवंत रखना है? मूलभूत प्रश्न, मौलिक प्रश्न एक ही है, किस लिए खा रहे हैं? शरीर को जिंदा रखने के लिए, जीने के लिए खा रहे हैं कि खाने के लिए जी रहे हैं?
मारने के लिए तो नहीं खा रहे।
आसक्ति, आसक्ति से मुक्त होना, मोह से मुक्त होना, आकर्षण से मुक्त होना, ये लक्ष्य है। और वो भी एक दिन में नहीं हुआ जा सकता है, मन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, इतना चंचल है कि विवेकानंद ने इसकी तुलना उस बंदर से की है जो पागल है। बंदर पहले से ही चंचल है, बंदर का तो स्वभाव ही चंचलता का है। सबसे ज्यादा चंचल अगर देखा जाए तो बंदर एक जगह रुकता नहीं है, इधर से उधर उधर से उधर, उसकी आंखें देखो यहाँ वहां देखती रहती है। तो हमारा मन किसके जैसा है? बंदर के जैसा भी नहीं, वह बंदर जो पागल हो गया है। फिर उस पागल बंदर को किसी ने दारू पिला दी, पहले तो बंदर, उसमें भी पागल, उसमें भी पागल बंदर, और उसको फिर किसी ने दारू पिला दी, और फिर एक भूत आत्मा, प्रेत आत्मा उसमें प्रवेश कर गई। अब ये जो है बंदर, जो कि पागल, जो कि दारू पिला दिया और जिसके बाद में एक भूत आत्मा उसमें प्रवेश कर गई, ये बंदर है तुम्हारा मन। अब इसको कंट्रोल में करो। अब क्या करोगे? अब बोलोगे कि ये तो सहज मार्ग है, बाबा ने कहा है आराम से बैठो, लेटे लेटे बाप को याद करो, इससे नहीं होगा। सहज कुछ नहीं है, मेहनत की जरूरत नहीं है, मोहब्बत में खो जाओ। मोहब्बत ये बंदर है, अभी उसको मोहब्बत कर, उसको अनुभव कराओ कि भाई तू शांत हो जाओ, मोहब्बत में खो जाओ। तुम्हारी स्थिति इस बंदर की तरह है, इसने ऐसे ऐसे उपद्रव किए इतने जन्मों में विकारों की, उसमें पहले पागल हो गया ये विकारों से, फिर इच्छाओं का उसमें वो दारू पिला दिया किसने। इच्छा इतनी ज्यादा है कि ज्ञान में आना ना आना इससे कोई संबंध नहीं है इच्छाओं का, पहले भी थी, अभी उसका रूप परिवर्तन हुआ है वही रूप उसने बदल दिया है, अभी उसने ज्ञान युक्त रूप धारण किया है। जो इच्छाएं पहले लौकिक में भी थी, अभी उसकी इसका रूप ही अलग है कुछ, अभी उसका नाम सेवा है। पहले था कि मुझे चाहिए, पहले तो स्वीकार करते थे, खुलेआम था कि ठीक है भाई हम में ये इच्छा है, अभी वैसा नहीं है, अभी उसका नाम सेवा है, उन्हीं इच्छाओं का नाम। तो ये मार्ग कठिन है, कल भी कहा बाबा ने, दो जोड़े आते हैं कहते हैं दोनों मिलके बाबा है, ये मेहनत की बात है। स्त्री और पुरुष इस भान से ऊपर उड़ जाओ, इतना आसान नहीं है। जन्म से जिस तन में है वो स्त्री का शरीर है या पुरुष का शरीर है। अब बाबा नारीपन से मुक्त होने को कह रहे हैं, उस पुरुषत्व से मुक्त होने को कह रहे हैं, उस नारीत्व से मुक्त होने को कह रहे हैं। इस नारीत्व और पुरुषत्व से मुक्त होकर शुद्ध चेतना में स्थित हो जाना, विशुद्ध चेतना के उच्चतम स्तर का अनुभव करना और सबको वो विशुद्ध चेतना ही देखना, चेतना के स्तर पर ही किससे इंटरैक्ट करना, चेतना के स्तर पर, देह के स्तर पर नहीं। दिख रहा केवल देह, चेतना दिख नहीं रही है, और उसके स्तर में हमारा कार्य व्यवहार हो, ये उच्चतम अवस्था है अध्यात्म की, जिसके लिए ऋषियों ने, साधुओं ने, मुनियों ने संसार का त्याग दिया, सारे सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया, जमीन पे सोए, कल कंद मूल फल खाए, हर प्रकार का संयम किया, फिर भी नहीं कर पाए। हम यहाँ महलों में रहकर 36 प्रकार के भोग खाकर हम कहते हैं हम योगी है। कह तो रहे हैं, परंतु कहीं हम किसी झांसे में तो नहीं, कहीं धोखे में तो नहीं जी रहे। कहने मात्र योगी तो नहीं है कि अपनी ही चीटिंग कर रहे हैं। ऊपर से तो योगी है, दिखने में तो योगी है, दिखने में चेहरे पर तेज है, स्वच्छ कपड़े हैं, बैच है, कोई भी देखता है तो अज्ञानियों की दृष्टि से तो योगी है, बाहर वाले देखते तो हाँ योगी तो लगते है, बाहर वालों से तो आगे ही है, परंतु स्वयं से यहाँ दूसरों की तो बात ही नहीं है, बात का छोड़ी तो दूसरे का कुछ है ही नहीं। दूसरे क्या कह रहे हैं, अरे भाई हमने अच्छा कार्य किया, ये दादी हमको कुछ कहे, कोई हमें कुछ बड़ा हमारी सराहना करे, अप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट दे, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा अपना क्या है, किसने कह भी दिया, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दिया, भाई तुम तो बहुत बड़े योगी हो, और हमको पता है हम है ही नहीं। तो योगी अर्थात अनासक्त, योगी अर्थात आंतरिक आसक्तियां जलकर भस्म हो चुकी है, आकर्षण होने की तो बात ही नहीं है। सर्व संबंध का अनुभव है कि कोई कोई संबंध का अनुभव है, सर्व संबंध से बाप को अपना बनाया है कि कोई संबंध किनारे रख दिया है, सर्व है ही एक, दो में अटेंशन जाता है, कोई का भाई में, कोई का बच्चे में, कोई का पोत्र में, नहीं, निभाना अलग चीज है, आकर्षित होना अलग चीज है, एक है निभाना, निभा रहे हैं, पर आकर्षित होके निभाना है, वो उसकी जांच, वो कौन उसका सर्टिफिकेट दे, हम खुद ही दे सकते हैं। कोई घर के सारे संबंध को निभा रहा है परंतु ऊपर से लग रहा है कि इसकी बहुत आसक्ति है, पर अंदर से ऐसा हो सकता कोई आकर्षण ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से लगे कि कोई आसक्ति नहीं है पर अंदर से बहुत आसक्ति है। तो नष्ट मोह हो, पांडवों को पैसे कमाने में मोह नहीं है, ट्रस्टी होकर कमाना अलग चीज है, लगाव में एक से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। कभी धन में मोह जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है, क्या होगा कैसे होगा, जमा कर ले, कुछ कर ले, पता नहीं कितने वर्ष के बाद विनाश होता है, दस वर्ष लगते हैं या 50 वर्ष लगते हैं, ये नहीं आता। नष्टो मोह बनकर ट्रस्टी बनकर के चलना और मोह से चलना कितना अंतर है। नष्टो मोह की निशानी क्या होगी, कभी कमाने में, धन संभालने में दुख की लहर नहीं आएगी, कभी कम कभी ज्यादा में दुख की लहर आती है, पोतरा धोतरा थोड़ा बीमार हो गया तो दुख की लहर आती है, नष्टो मोह है। कुछ भी हो जाए बेफिक्र हो, नष्टो मोह अर्थात दुख और अशांति का नाम निशान नहीं, थोड़ी भी दुख की लहर आ रही है, फील होता है, सेंसिटिव नेचर फील है, मतलब अभी भी मोह है, सारा पुरुषार्थ ही मोह से मुक्त होने का है, संपूर्ण मोह मुक्त निर्मोही अवस्था, ऐसे हो या बनना है। तो एक बल एक भरोसा अर्थात जरा भी दुख के लहर की हलचल नहीं हो, सदा ये स्मृति स्वरूप हो कि सदा एक बल एक भरोसा वाले हो और आगे भी सदा रहेंगे, खुशी रहे कि मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही बनूंगा। बाबा ये विश्वास दिला रहे हैं कि ये जो अवस्था जिसका वर्णन बाबा कह रहे हैं, ऐसी साक्षी स्थिति, ऐसी नष्टो मोह स्थिति, ऐसी उपराम स्थिति, मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही बनूंगा, तुम बने थे या संभव नहीं है, ऐसी उच्चतम अवस्था को तुमने पाया था जिसमें कोई बंधन नहीं था,